नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। माइकल ए हिज्डजिक की डीलर्स ऑफ लाइटनिंग, जेरोक्स पार्क और कंप्यूटर युग की शुरुआत, प्रौद्योगिकी इतिहास और कॉरपोरेट विश्लेषण का महत्वपूर्ण वृत्तांत है। यह पुस्तक बताती है कि 1970 और 80 के दशकों में कैलिफोर्निया स्थित जेरोक्स के पालो आल्टो रिसर्च सेंटर यानी पार्क ने आधुनिक व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की कई बुनियादी अवधारणाओं को कैसे विकसित किया। इसमें जेरोक्स आल्टो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस, इथरनेट, लेजर प्रिंटर और स्मॉल डॉक जैसी प्रगति के पीछे लोगों, प्रयोगशाला संस्कृति और संस्थागत संघर्षों का विवरण है। हिल्टजिक केवल आविष्कारों की सूची नहीं देते, उनका केंद्रीय प्रश्न यह है कि इतनी दूरदर्शी तकनीकें बनाने वाली जेरोक्स उन्हें व्यापक बाजार तक क्यों नहीं पहुंचा सकी। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अधिकारियों के साक्षात्कारों पर आधारित यह पुस्तक शोध की स्वतंत्रता और व्यावसायिक निर्णयों के बीच तनाव को सामने रखती है। इसलिए यह कंप्यूटर के इतिहास के साथ साथ इस बात का अध्ययन भी है कि किसी संस्था में भविष्य की पहचान करने की क्षमता कैसे बनती या विफल होती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जेरोक्स पार्क ने आधुनिक व्यक्तिगत कंप्यूटर के उपयोग का ढांचा तैयार किया। पुस्तक का सबसे ठोस योगदान यह दिखाना है कि पार्क की उपलब्धियां किसी एक उपकरण तक सीमित नहीं थीं। वहां विकसित जेरोक्स आल्टो ने कंप्यूटर को केवल विशाल संस्थागत मशीन के बजाय व्यक्ति के काम, लेखन, संचार और रचनात्मकता के माध्यम के रूप में देखने का रास्ता खोला। बिटमैप स्क्रीन, खिड़कियां, आइकन, माउस और स्क्रीन पर दिखने वाले रूप में दस्तावेज तैयार करने की धारणा ने कंप्यूटर के साथ मानवीय संपर्क का स्वरूप बदला। यह परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय कंप्यूटर का उपयोग प्रायः कमांड और विशेषज्ञ ज्ञान पर निर्भर था। पार्क के शोधकर्ताओं ने ऐसी प्रणाली की कल्पना की जिसमें दृश्य संकेतों और प्रत्यक्ष क्रिया के सहारे अधिक लोग काम कर सके। हिल्टजिक यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन विचारों की शक्ति उनके आपसी मेल में थी। एक ग्राफिकल इंटरफेस, नेटवर्क से जुड़ा कार्यस्थान, दस्तावेज निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली छपाई मिलकर भविष्य के कार्यालय का प्रारूप बनाते थे। बाद में एप्पल और अन्य कंपनियों ने इन अवधारणाओं को अलग रूपों में लोकप्रिय बनाया। पुस्तक इस लोकप्रिय मिथक को अधिक सटीक बनाती है कि तकनीकी इतिहास केवल उस कंपनी का इतिहास नहीं होता जिसने उत्पाद बेचा। अक्सर बुनियादी विचार किसी शोध प्रयोगशाला में जन्म लेते हैं और बाजार तक पहुंचने का श्रेय दूसरी संस्थाओं को मिलता है। दूसरा, खुली शोध संस्कृति ने असाधारण सहयोग और तेज प्रयोग संभव किए। डीलर्स ऑफ लाइटनिंग पार्क को केवल धन से संपन्न प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि एक ऐसी कार्य संस्कृति के रूप में देखती है जहां प्रतिभाशाली लोगों को कठिन समस्याओं पर स्वतंत्रता से काम करने का अवसर मिला। बॉब टेलर जैसे नेताओं की भूमिका इस अर्थ में महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अलग अलग विशेषज्ञताओं वाले लोगों को एक साझा तकनीकी दृष्टि के आसपास जोड़ा। कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, नेटवर्किंग और दस्तावेज उत्पादन को अलग विभागीय खांचों में बांधने के बजाय पार्क में इनके बीच निरंतर संपर्क हुआ। इसी कारण एक आविष्कार दूसरे को उपयोगी बनाता गया। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत कार्यस्थान की उपयोगिता नेटवर्क, प्रिंटिंग और नए सॉफ्टवेयर वातावरण से बढ़ती थी। पुस्तक में एलएनके की उस व्यापक सोच को भी स्थान मिलता है जिसमें कंप्यूटर को सीखने और अभिव्यक्ति का व्यक्तिगत माध्यम माना गया। स्मॉल टॉक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का विकास इसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा था, केवल तकनीकी दक्षता से नहीं। फिर भी पुस्तक का संकेत यह नहीं कि बिना सीमा की स्वतंत्रता अपने आप सफलता देती है। पार्क की रचनात्मकता को उच्च स्तर के सहकर्मियों, साझा उपकरणों, प्रयोग करने की अनुमति और दीर्घकालिक वित्त पोषण का सहारा मिला। व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि नवाचार के लिए केवल विचारवान व्यक्ति पर्याप्त नहीं होते, विचारों को जल्दी आजमाने, आलोचना करने और दूसरे विचारों से जोड़ने वाली संस्थागत व्यवस्था भी जरूरी होती है। तीसरा, रॉचेस्टर और पालो आल्टो के बीच दूरी ने जेरोक्स की रणनीतिक दृष्टि सीमित की। पुस्तक का केंद्रीय तनाव जेरोक्स की स्थापित कॉपियर व्यावसायिक मानसिकता और पार्क की उभरती कंप्यूटिंग दृष्टि के बीच है। जेरोक्स के कई वरिष्ठ निर्णयकर्ता उस व्यापार मॉडल में प्रशिक्षित थे जिसमें कागज की प्रतियां, मशीनों की लीज और प्रति पृष्ठ आय स्पष्ट तथा मापने योग्य थी। इसके विपरीत पार्क के शोधकर्ता ऐसे कार्यालय की दिशा में काम कर रहे थे जिसमें डिजिटल दस्तावेज, नेटवर्क और व्यक्तिगत कंप्यूटर मुख्य भूमिका ले सकते थे। यह केवल भौगोलिक दूरी का प्रश्न नहीं था, हालांकि पूर्वी तट के प्रबंधन और पालो आल्टो की प्रयोगशाला के बीच दूरी प्रतीकात्मक थी। असली अंतर इस बात में था कि दोनों पक्ष मूल्य को कैसे समझते थे। शोधकर्ता भविष्य में बनने वाली क्षमता देखते थे, जबकि कंपनी तत्काल ग्राहक, वितरण, कीमत और मौजूदा उत्पादों पर असर को प्राथमिकता देती थी। हिल्डजिक इस विफलता को साधारण मूर्खता की कहानी नहीं बनाते। नई तकनीक को उत्पाद में बदलना महंगा, जोखिमपूर्ण और संगठनात्मक रूप से जटिल होता है। फिर भी पुस्तक दिखाती है कि जेरॉक्स इस जटिलता से जूझने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिबद्ध नहीं हुई। उसने पार्क को अनुसंधान की स्वतंत्रता तो दी, पर उसकी खोजों के लिए स्पष्ट उत्पाद रणनीति, नेतृत्व समर्थन और बाजार तक पहुंचने का अनुशासित मार्ग नहीं बनाया। इसीलिए यह कथा स्थापित कंपनियों के लिए चेतावनी है। यदि मूल्यांकन के मापदंड केवल वर्तमान आय पर टिके हों, तो संस्था अपने ही भीतर विकसित अगले बाजार को पहचानने से चूक सकती है। चौथा, आविष्कार और व्यावसायीकरण अलग क्षमताएं हैं और जेरॉक्स इस अंतर को नहीं पाट सकी। पार्क की कहानी का लोकप्रिय संक्षेप यह है कि जेरॉक्स ने भविष्य का आविष्कार किया और उसे एप्पल को दे दिया। हिज्डजिक का विवरण इससे अधिक उपयोगी है, क्योंकि वह बताता है कि तकनीक का निर्माण और उसका सफल व्यावसायीकरण अलग पर जुड़ी हुई क्षमताएं हैं। शोध प्रयोगशाला में एक कार्यशील प्रणाली बनाना पहला चरण है। उसके बाद उत्पाद को भरोसेमंद, सस्ता, सरल, निर्मित करने योग्य, वितरित करने योग्य और ग्राहक के लिए समझने योग्य बनाना पड़ता है। जेरॉक्स आल्टो प्रभावशाली था, लेकिन वह व्यापक उपभोक्ता बाजार के लिए तैयार उत्पाद नहीं था। फिर भी यह तथ्य जेरॉक्स की रणनीतिक कमी को समाप्त नहीं करता। कंपनी के पास इस दिशा में सीखने, प्रयोगात्मक बाजार बनाने और अपनी मजबूत कार्यालय उपस्थिति का उपयोग करने के अवसर थे। पार्क की तकनीकों से नीति अवधारणाएं एप्पल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों के विकास में प्रभावशाली बनी, क्योंकि उन संस्थाओं ने उन्हें उत्पाद, मंच और बाजार के रूप में आगे बढ़ाया। पुस्तक इसलिए बौद्धिक संपदा के स्वामित्व से अधिक संगठनात्मक निष्पादन पर ध्यान खींचती है। किसी कंपनी के पास पेटेंट, प्रतिभा या प्रोटोटाइप होना पर्याप्त नहीं। उसे यह तय करना पड़ता है कि कौन सा ग्राहक बदलेगा, मौजूदा आय पर क्या असर होगा, कौन सा उत्पाद पहले उतरेगा और असफल शुरुआती प्रयासों का खर्च कौन उठाएगा। पार्क की विरासत बताती है कि अनदेखी की गई तकनीक बाहर जाकर प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बन सकती है। अंत में पुस्तक तकनीकी प्रगति को व्यक्तियों, सत्ता और निर्णयों के मानवीय इतिहास के रूप में देखती है। हिल्डजिक की शैली इस पुस्तक को केवल कंप्यूटर तकनीकों के इतिहास से अलग बनाती है। व्यापक साक्षात्कारों के आधार पर वे पार्क के वैज्ञानिकों, प्रबंधकों और जेरॉक्स अधिकारियों के बीच व्यक्तित्व, महत्वाकांक्षा, टकराव और अलग अलग मान्यताओं को महत्व देते हैं। बॉब टेलर, एलन के और बटलर लैम्पसन जैसे पहचाने हुए नाम यहाँ केवल महान आविष्कारक नहीं है, वे उन बहसों के प्रतिनिधि भी हैं जिनमें यह तय हो रहा था कि कंप्यूटर किसके लिए होगा, उसे बनाना कैसे चाहिए और शोध का उपयोग कौन तय करेगा। यह मानवीय दृष्टि जरूरी है, क्योंकि तकनीक को अक्सर अनिवार्य प्रगति की तरह बताया जाता है, मानो एक बार विचार जन्म लेने पर उसका बाजार तक पहुंचना तय हो। पुस्तक इसके उलट दिखाती है कि हर तकनीकी दिशा संस्थागत निर्णयों और शक्ति संबंधों से प्रभावित होती है। किस परियोजना को समय मिलेगा, किस प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जाएगा, किस जोखिम को स्वीकार किया जाएगा और किस विचार को मौजूदा कारोबार के लिए खतरा माना जाएगा, ये सभी निर्णय भविष्य को आकार देते हैं। साथ ही पुस्तक की सीमा भी यही दिखाई देती है। यह मुख्यतः एक जीवंत ऐतिहासिक वृत्तांत है, न कि तकनीकी सिद्धांतों की अत्यंत गहरी पाठ्यपुस्तक। पाठक को एल्गोरिदम या प्रणाली डिजाइन का विस्तृत शिक्षण नहीं मिलता, बदले में उसे उस सामाजिक और कॉरपोरेट संदर्भ की समझ मिलती है जिसमें कंप्यूटिंग की निर्णायक अवधारणाएं विकसित हुई और फिर अलग कंपनियों द्वारा अपनाई गईं। निष्कर्ष में डीलर्स ऑफ लाइटनिंग उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर, ग्राफिकल इंटरफेस, नेटवर्किंग और डिजिटल दस्तावेजों की उत्पत्ति को केवल उत्पादों की सूची के रूप में नहीं, बल्कि संस्थागत निर्णयों के परिणाम के रूप में समझना चाहते हैं। तकनीकी पेशेवरों को इसमें शोध, उत्पाद और बाजार के बीच की खाई पर विचार करने का ठोस संदर्भ मिलेगा। प्रबंधकों और उद्यमियों के लिए यह पुस्तक बताती है कि दूरगामी नवाचार को पहचानना और उसे व्यवसाय में बदलना, प्रयोगशाला को वित्त देना भर नहीं है। इतिहास, डिजाइन और सिलिकॉन वैली के विकास में रुचि रखने वाले सामान्य पाठक भी इसकी पत्रकारिता आधारित, चरित्र केंद्रित प्रस्तुति से लाभ उठा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जेरॉक्स पार्क की उपलब्धियों को किसी सरल चोरी या असफलता की कथा में सीमित नहीं करती। इसके बजाय यह दिखाती है कि जेरॉक्स के पास असाधारण शोध क्षमता थी, पर स्थापित व्यवसाय की धारणाओं, उत्पाद रणनीति की सीमाओं और आंतरिक दूरी ने उसकी संभावनाओं को बांध दिया। अनेक तकनीकी इतिहास पुस्तकें किसी आविष्कार की कार्यप्रणाली या किसी सफल कंपनी की विजय पर केंद्रित रहती है। हिल्डजिक की पुस्तक उस निर्णायक मध्य क्षेत्र को पकड़ती है जहां विचार, प्रतिभा, प्रबंधन और बाजार एक दूसरे से टकराते हैं। यही इसे आज भी प्रासंगिक बनाता है, खासकर उन संगठनों के लिए जो नई तकनीक विकसित तो करते हैं लेकिन यह तय नहीं कर पाते कि वह उनकी वर्तमान पहचान को बदलेगी या बचाएगी। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल आ हिल्सिक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।